ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನಾಯ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನಾಯ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನ ಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನ ಚಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Giri Varadhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Giri Varadhari. श्री हरि नाम संकीर्तन की गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साघ्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है बलराम जयंती के ये उत्सव के अवसर पर। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सब बल के स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, तो भगवान ने स्वयं बलराम जी को ये विशेष सेवा या उनको प्रकट ही इसके लिए किया कि जो भी बल हमको इस दुनिया में दिखाई देता है, तो सूक्ष्म स्तर का बल हो या शारीरिक स्तर का बल हो या बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर का, बुद्धि के स्तर का, शरीर के स्तर का, जो भी बल दिखाई देता है, तो ये सभी बल का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, तो वो बलराम जी में है। तो जन्मदिन के अवसर पर जिसका जन्मदिन रहता है तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न उसका चित्त रहता है, बहुत आनंदित रहता है। और ऐसे आनंदी मनस्थिति में जो भी चीज हम उनसे मांगते या प्रार्थना करते वो तुरंत वो दे देते हैं, जनरली ये देखा जाता है। अगर कोई का किसी व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं है तो एकदम सही चीज मांगने पर भी वो पोस्टपोन करेगा, बाद में देता हूं, या अवॉइड करेगा, टालेगा। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत प्रसन्न मनस्थिति में है तो जो भी रिक्वेस्ट हम उनसे करते वो तुरंत एग्री हो जाता है, वो स्वीकारता है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कोई भी संस्था का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी राष्ट्र का या कोई भी कंट्री का जो चीफ रहता है, या जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है जो प्रमुख व्यक्ति रहता है तो उसको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। तो ऐसा ही स्टेट का जो प्रमुख रहता है उसको चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। तो ऐसे ये चीफ व्यक्ति उनका पूरे साल का इटिनरी बनता है कि अगले महीने में ये कहाँ जाएंगे या उसके अगले महीने में कहाँ जाएंगे। तो ये जब उनका अगले एक साल का या जो भी समय है तो कहाँ जाएंगे ये सब पहले ही डिसाइड होता है। और ये डिसाइड होने के बाद जो उनके एकदम क्लोज हैं, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी है या पर्सनल सर्वेंट है या जो भी उनके एकदम विश्वसनीय व्यक्ति है, ऐसे जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, तो वो पर्सन को, वो व्यक्ति को जिस जगह पर ये अभी अगले वीक या अगले महीने जाने वाले हैं वो जगह पर वो व्यक्ति जाता है। और वो जगह में क्या क्या सुविधा है ये सब निरीक्षण करता है। और साथ ही साथ उसको ये भी पता रहता है कि मेरे जो मालिक है, मेरे जो बॉस है या मेरे जो अधिकारी है, तो इनको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो ये सब उसको जानकारी रहती है। और उसी के अनुसार फिर ये व्यक्ति जो जगह पर वो एडवांस पार्टी के रूप में गया है तो वो जगह पर सब व्यवस्था करता है। तो ये प्रमुख को, ये चीफ को क्या क्या खाने में अच्छी चीजें लगती है, तो उनका बेड कौन से जगह पर होना चाहिए या उनको ट्रैवलिंग के लिए कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, ये सब व्यवस्था ये एडवांस पार्टी में गया हुआ उनका एकदम जो विश्वसनीय व्यक्ति है, ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है, वो करता है। तो एक्चुअली ये दुनिया में ये चीज होती है। तो ये चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी का भी, अगर अनेक ब्रांचेस जो कंपनी के है उसमें से एक भी ब्रांच में अगर वो जाना चाहता है तो पहले उसका ये जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो जाएगा, वो सब देखेगा। तो एक्चुअली ये चीफ लोगों की ऐसे कर रहा है क्योंकि ये कहां से आया, इसका ओरिजिन एक्चुअली भगवान में है। तो भगवान ही एक्चुअली वास्तव में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन ये सीएमडी का थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म बदलेंगे तो वही क्या है, वो क्रिएटर है, मेंटेनर है और डिस्ट्रॉयर है। तो जैसे जीओडी गॉड को जनरेटर, ऑपरेटर एंड
डिस्ट्रॉयर, तो ये सीएमडी का लॉन्ग फॉर्म हम मॉडर्न भाषा में लोगों को समझे इसलिए ये भी कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें कंपनी का जो सीएमडी रहता है वो भी करते रहता है, वो नए लोगों को रिक्रूट करता है, वो कुछ क्रिएशन करता है, और फिर कंपनी आगे के 15-20-30 साल तक चले इसके लिए जो मेंटेनेंस का कार्य है, तो अलग अलग सिस्टम इंप्लीमेंट करना, नए नए इक्विपमेंट्स लाना या ट्रेनिंग देना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग देना, तो ये कंपनी का मेंटेनेंस करने के लिए भी वो कार्य करता है। और फिर कभी कभी जब कुछ मंदी आ जाती है, स्लैक हो जाता है या कुछ नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, तो कुछ लोगों को निकालना भी पड़ता है, कुछ लोगों को जॉब से निकालना भी पड़ता है। तो ये किसी कंपनी का या देश का या राष्ट्र का भी चीफ करता है। तो एक्चुअली ये भगवान का मेन कार्य है, भगवान भी इस दुनिया में क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और डिस्ट्रक्शन। तो विशेष करके बारिश के समय में हम देखते हैं कि पहली बारिश गिरने के बाद या 2-3 बारिश गिरने के बाद जो घास एकदम सूख गया था, वहां पर कोई हरियाली नहीं थी, वहां पर नया घास आ जाता है, तो क्रिएशन हो जाता है। तो किसान लोग अलग अलग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के बीज बोते हैं, तो एक खेत में कई हजारों लाखों पौधे अंकुरित हो जाते या बीज अंकुरित हो जाते और आगे उसकी फसल बनती है। तो ये क्रिएशन, या जरा आप कैलकुलेट करेंगे कि पर डे पूरे जगत में कितने मानवों के बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो मानवों के, प्राणियों के, पक्षियों के ये संतान जो है या बच्चे हैं ये जन्म ले रहे हैं, क्रिएशन। और जब जन्मदिन होता है तो लोग मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं या बहुत आनंद होता है, क्रिएशन के फेज में सबको आनंद होता है। और मेंटेनेंस में जरा दुख थोड़ा बढ़ने लगता है, तो एक एक बिल्डिंग का मेंटेनेंस करने के लिए भी लोग ऐसा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और उसका भी 10-15 साल का जो बॉन्ड रहता है, तो उसमें जो भी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती है वो एजेंसी, या कोई भी बड़ा मशीन खरीदते हैं तो उसका भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है या पीरियड, सर्विस पीरियड रहता है। तो उसमें जरा दुख चालू हो जाता है, प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। और फिर डिस्ट्रक्शन में, तो डिस्ट्रक्शन लोगों को अच्छा नहीं लगता, जॉब से अगर कोई निकाला जाता है व्यक्ति तो मालिक को, जो कंपनी का सीएमडी है, उसको बहुत अंदर ही अंदर पूरे शब्द बोलता है वो। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये प्रकृति के ये तीन अविभाज्य भाग है, इसको हम केवल क्रिएशन ही रहता होता रहे ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो जिसी कंपनी में ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल रिक्रूट ही करते रहो, नए लोगों को निकालना या रिटायर मत करो लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे एक कंपनी की सीएमडी को भी ऐसा तीनों चीज करना पड़ता है, और लोगों का कुछ ना कुछ ये जो अभिशाप है या जो पूरे वचन है उसको सुनने पड़ते हैं। तो हाल ही में अभी कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले भगवान ने ये डिस्ट्रक्शन का एक छोटा सा झलक दिखाया कि जो भी बाढ़ आई मुंबई में, सांगली, कोल्हापुर या अलग अलग महाराष्ट्र के कई स्थानों पर, तो वहां पर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तो लोगों को ये डिस्ट्रक्शन अच्छा नहीं लगता। और विशेष करके जो आध्यात्मिक स्तर पर काम करने वाली संस्था है तो वो ऐसा तुरंत मदद करने के लिए उधर नहीं जाते, तो वो हमारे संस्था के बारे में भी जरा बुरा अलग सोचते हैं। बाकी संस्थाएं अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से चावल इकट्ठा कर रही है, धान इकट्ठा कर रही है, वाटर बॉटल्स इकट्ठा कर रही है और वहां पर बांटने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जरा सर्वे करेंगे कि ये सब इकट्ठा किया हुआ सामग्री, उसका कुकिंग किया, उसके पैकेट बनाए और हेलीकॉप्टर से केवल फेंक रहे, वो अंदाज से फेंक रहा है, इधर लोग होंगे उनको मिलेगा, तो मदद करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी मदद सही लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और जो मदद करने जा रहा है उनको भी अपनी जान की जान का खतरा है। तो ऐसे अब पानी भरा हुआ जो जगह है उससे उनकी गाड़ी जाएगी या हेलीकॉप्टर से, वो डालते डालते खुद भी नीचे गिर सकता है वो, या कुछ भी ऐसा खुद का भी अपघात हो सकता है जिसमें उसकी जान चली जा सकती है। तो वास्तव में ये डिस्ट्रक्शन का जो ये उदाहरण है, तो इसमें केवल आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने ही अच्छा कार्य किया। तो वो टीम वर्क करते थे, उनके पास सब फैकल्टीज या जो सुविधाएं चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए वो रहता था। तो अन्य लोग गए लेकिन उनको भी संतुष्टि नहीं मिली कि हमने ये बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ मदद की। तो केवल एक श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, तो ये बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ मदद करने की इच्छा होते हुए भी उधर जाने के बाद जिस ढंग से उनको मदद करने की इच्छा थी वो पूरी तरह से वो कर नहीं पाया, और उनको जो संतुष्टि चाहिए, समाधान चाहिए कि हाँ हमने उधर जाके बहुत सेवा की, ऐसा नहीं मिला। तो एक्चुअली भगवान भी ये डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। तो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ कि 15-20 फीट पानी था और उसमें बहुत सारे जानवर और 1.5 लाख मानव उसमें मर गए। तो एक्चुअली भगवान इस दुनिया के वास्तविक CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्रिएटर है, मेंटेनर है और डिस्ट्रॉयर है। तो ऐसे भगवान जब इस पृथ्वी पर आएंगे तो नेचुरली है कि उनका भी एकदम विशेष पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी कौन होना चाहिए। और वो इधर आने के बाद भगवान यहाँ जो जो कार्य करेंगे, जो जो मिशन से इधर आने वाले हैं, वो मिशन पूरा करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधा ये उनके विस्तार। तो भगवान स्वयं ही अपने को विस्तारित करते। तो ऐसा बताया जाता है कि एक ध्यान योगी या अष्टांग योगी भी खुद को 8 रूपों में विस्तारित कर सकता है, या आजकल के भाषा में कई सिनेमा में फिल्मों में डबल रोल दिखाया जाता है, एक ही नायक रहता है लेकिन उसके डबल रोल या ट्रिपल रोल भी रहते हैं। तब लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, यार एक ही व्यक्ति है वो 2-3 जगह कैसे उपस्थित है। तब वो भ्रम में या इल्यूजन में 3 घंटा मूवी देखेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो कथा चल रही है, जो स्टोरी लाइन चल रही है, उसमें एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे और देखने के बाद उसकी चर्चा भी करेंगे, लोगों को सुनाएंगे भी। लेकिन भगवान जब ऐसा कार्य करते तो तुरंत लोगों के मन में माइंड आ रहा है कैसा हो सकता है, भगवान विस्तार कर वो सेम भी है, नई भी है, ये अचिंत्य है। तो मूवी देखते टाइम अचिंत्य है ऐसा नहीं लगता, लेकिन भगवान के बारे में अगर कोई ऐसी लीला बताते तो तुरंत ये समझ में नहीं आता, ये तो काल्पनिक है। तो ऐसा अंदर ही अंदर बोलते नहीं, अरे सब भक्त है, ऐसा बातें करेंगे तो मैं नास्तिक, मेरा जो नास्तिक का भाव है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए भक्त भी अंदर ही अंदर ऐसे जरा वो डाउट रहता है, संदेह रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जरा ये उदाहरण मन में लाएंगे तो जरूर ऐसा हो सकता है, भगवान में ये क्षमता है कि वो अपने जैसा ही एकदम डुप्लीकेट बनाए, एकदम नकल कॉपी, कार्बन कॉपी बनाए, और उनका जरा अधिकार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र अलग रहेगा और खुद का जो उद्देश्य है वो अलग रहेगा, खुद की एक्टिविटी थोड़ा अलग रहेगी। तो बलराम जी ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी है। तो वो इस दुनिया में प्रकट होते हैं भगवान यहां पर अवतरित होने के पहले। तो सुबह की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, लेकिन उसके पूर्व क्या हुआ, देवकी के जो 6 गर्भ है उनकी हत्या हो गई। तो ये हत्या देवकी और वसुदेव इनकी आंखों के सामने हुई। तो एक सुसंस्कृत माता पिता को अपने ही आंखों के सामने अपने शिष्यों की हत्या करते हुए ये देखा भी नहीं जाएगा, सहन ही नहीं कर सकते हो। लेकिन देवकी और वसुदेव इन्होंने एक बार नहीं लेकिन 6 बार ये सहन किया। तो क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को भगवान का मिशन क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान 8वें पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो उसके पहले जो भी दर्द हुए, दुख हुए, वो हमें अभी सहन करना है। तो रूपा उदाहरण देते हैं एक जगह कि दिल्ली में एक बार एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन अरेंज की और ये पेंटिंग कंपटीशन का विषय क्या था, ऐसे माता का चित्र निकालिए कि जिसके शिशु की हत्या उसके सामने हो रही है, तो माता की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो माता का चित्र अलग अलग पेंटर्स जो आए उनको निकालना था। तो जो पिक्चर को, जो पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला, वो पेंटिंग क्या था, जिसमें वो माता ने अपने दोनों हाथ चेहरे के ऊपर रख दिए और अपने आंखों के ऊपर रख दिए, और उसको ये देखा नहीं जा रहा था कि मेरे बच्चे की हत्या मेरे सामने हो रही है। तो ये सुसंस्कृत माता पिता 5000 वर्ष पूर्व देवकी और वसुदेव, इनकी वात्सल्यता इतनी हाईएस्ट थी कि अभी के माता पिता हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना स्नेह होता है, विशेष करके माता को अपने शिशु के प्रति कितना स्नेह होता है, ये आजकल इतना हम समझ नहीं सकते। लेकिन देवकी और वसुदेव इन दोनों ने एक बार नहीं लेकिन 6 बार सहन किया, और फिर बाद में आगे जन्म होने के बाद भगवान ने क्या कहा कि तुरंत मुझे अभी गोकुल लेके चलो, इधर मथुरा में कंस के कारागृह में मुझे आप नहीं रख सकते। तो रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए, और सुबह के या भोर के 5 बजे तक वसुदेव लौट कर भी आए, यानी जो भी हुआ वो 12 से 5 के बीच में ही हुआ। उनका कृष्ण को टोकरी में रखना और यमुना को क्रॉस करना, गोकुल में जाना, नंद महाराज के पास रखना कृष्ण को, तो अंदाज़ से 1-1.5 घंटा ही भगवान उधर प्रकट रहे, और आगे के 10 साल वो कहाँ रहे, गोकुल में या वृंदावन में रहे। अगले 10-11 साल तक देवकी और वसुदेव इन दोनों को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तो माता पिता के विशेष करके बच्चों का जो बाल एक्टिविटी है, चाइल्डहुड एक्टिविटीज देखने में या उसका आस्वादन करने में बहुत आनंद आता है, विशेष करके उनकी जो तोतली बोली है या उनके दांत आ रहे छोटे छोटे, या वो हाथ से कुछ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी ये सब लीलाएं देवकी और वसुदेव को अनुभव करने को नहीं मिली। लेकिन फिर भी इन दोनों ने कंप्लेन नहीं की कि क्या है भगवान, आपको पाने के लिए हमने पूर्व जन्म में भी कई सैकड़ों हजारों साल तपस्या की, और अभी प्राप्त होने के बाद आप बोल रहे कि तुरंत मुझे लेके चलो, ऐसा शिकायत का भाव इन दोनों में नहीं था। तो ये जो 6 पुत्रों को ही हत्या की, ये 6 नंबर क्यों डिसाइड किया, 5 नहीं किया, 7 नहीं किया, 8 नहीं किया, 6 नंबर क्यों डिसाइड किया। तो इसके बारे में आचार्य बताते हैं कि ये जो देवकी के जो 6 पुत्र है, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के पौत्र हुए, और उसके बाद हिरण्याक्ष का पुत्र कालनेमी के पुत्र हुए, और वो ब्रह्मा जी का शाप के कारण वो असुर कुल में जन्मे, और अभी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना कर रहे थे, तो इधर हिरण्यकशिपु भी गुस्सा हो गए कि हिरण्याक्ष तो मारे गए, अभी मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी आराधना करने के बजाय ये ब्रह्मा को ही प्रसन्न करने के चक्कर में क्यों पड़े। तो उनका भी शाप मिला, और इसकी वजह से आप लोगों के पिता ही आपको मारेंगे, तो कालनेमी बने कंस, और ये कालनेमी के पुत्र बने देवकी के ये 6 पुत्र। तो ये जो 6 नंबर है, तो इससे हमें जानना चाहिए कि हमारे हृदय में भी भगवान कब प्रकट होंगे, उनके प्रकट होने के पूर्व पहले, जैसे बलराम जी प्रकट हो गए, और बलराम जी के प्रकट होने के पहले ये 6 शिशुओं की हत्या हुई। तो हमारे जीवन में भी जब तक ये जो 6 दुश्मन है हमारे, जो 6 एनिमीज हैं, और विशेष करके भगवान गीता में भी भगवान बताते हैं, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि येनम इह वैरिना। तो ये 6 हमारे वैरी है, विशेष करके काम, तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 हमारे एनिमीज है, हमारे शत्रु हैं। तो इनका जब हनन हो जाएगा, इनको जब मारा जाएगा, तभी वास्तव में हमारा भगवान के प्रति जो सेवा भाव है या भगवान मन में प्रकट होने के लिए जो मानसिक अनुकूलता चाहिए, जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, वो प्रकट होगा। जब तक ये 6 चीजें हमारे जीवन में रहेंगे तब तक सच्चा भक्ति भाव कभी भी जागृत नहीं होगा, आएगा हृदय में आएगा नहीं, और उसके बाद भगवान भी प्रकट हो नहीं होंगे। तो ये 6 जो है ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर है, और साथ साथ 6 जैसे गीता में भी बताते भगवान, ममे वंश जीव लोकी जीव भूत सनातन मनश्रष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन को पकड़कर ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो कर्षण चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है आनंद प्राप्त करने का, या हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 तन मात्रा, जी 5-5 के 3 सेट है, और मन को हर एक सेट से अगर जोड़ा जाए तो ये 6-6 के भी 3 सेट हो जाएंगे। और ये शब्द स्पर्श रूप गंध रस, तो ये जो तन्मात्रास है, कुछ आवाज सुनकर व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है, विशेष करके फिल्मी गाने सुनकर लोग आनंद प्राप्त करते हैं। तो आजकल इतने हाई क्लास स्टूडियोज बनाए जा रहे हैं केवल ये फिल्मी सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए, और अलग अलग सिंगर्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और उनका रिहर्सल, उनका प्रैक्टिस, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं केवल ये शब्द को और जरा रोमांचित करने वाला वो अनुभव हो। इसलिए ये 5 तन्मात्रास के लिए लागू है, शब्द स्पर्श रूप गंध रस। तो भगवान इतर वस्तुओं के प्रति जो ये शब्द स्पर्श रूप गंध रस है, इनके प्रति होने वाला आकर्षण जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम भगवान से संबंधित ही चीजों को हमारे आंखों से या हमारे त्वचा से, हमारे जिह्वा से, हमारे नाक से या कान से हम उनको संलग्न करेंगे, ऐसा जब भाव आ जाएगा तभी वास्तव में बलराम जी जो कि जैसे पर्सनल असिस्टेंट की तरह है, तो भगवान हमारे हृदय में अवतरित होने के पहले ये 6 जो चीजें हैं, 6-6 के 4 सेट हो गए, काम क्रोध मद मोह मत्सर्य, फिर 5-3 और मन कॉमन। तो ये उसका विश्लेषण है। तो हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जैसे बलराम जी बल होते हुए भी उनको अभिमान नहीं है। जनरली इस दुनिया में हम देखते कोई भी व्यक्ति रेसलर वगैरह रहता है तो अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता है, वो अपने जो मसल्स है उसका प्रदर्शन करते हुए उसके कई फोटो क्लिक होते हैं, कई कंपनियां उसको यूज करती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, या किसी के पास ज्ञान का बल है वो भी यूज करते लोग, और कुछ हद तक वो व्यक्ति खुद भी बहुत गर्विष्ठ रहता है अपने बल से, ज्ञान के बल से या बुद्धि के बल से या शारीरिक बल से। तो एक अच्छा सुभाषित है, उसमें 3 चीजें बताइए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतद् ज्ञानाय दानाय रक्षनाय च। तो जनरली लोग जो खल रहते हैं, खलनायक, वो ये 3 चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, विद्या विवादाय, विद्या को डिबेट करने के लिए, डिबेट या विवाद करने के लिए, संवाद नहीं लेकिन विवाद करते हो, और जो धनाढ्य व्यक्ति रहता है वो धन का उपयोग किस लिए करता है, मदाय, उसका अभिमान या प्राइड जो है वो बढ़ती है। जैसे ही व्यक्ति धनी बन जाता है तो वो जो उसके पुराने मित्र थे उनके साथ उसका व्यवहार बदल जाता है, जो कि अभी उसी इकोनॉमिकल स्टेटस में नहीं है। शक्ति ही परपीडनाय, शक्ति जो है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही इस्तेमाल करता है वो, लेकिन जो साधु वृत्ति का है तो उसको विपरीतम एतद, तो इसके उल्टा करता है वो उसका विद्या किसके लिए लगाता है, विद्या ज्ञानाय, वो उसकी खुद की विद्या लोगों को बांटने में इस्तेमाल करता है, न कि विवादाय। धनी व्यक्ति जब बन जाता है तो वो धन का दानाय, वो धन का भी वितरण करता है, और शक्तिशाली साधु व्यक्ति न परपीडनाय लेकिन पर रक्षनाय। और यही बात गीता में भी भगवान बताते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता। तो बलराम जी जिनका एक नाम है बलभद्र, तो भद्र और भद्रा, श्रीलिंगी आता है तो भद्रा और पुल्लिंगी आता है तो भद्र, ये इंग्लिश में आजकल जेंटलमैन, तो बल होने वाले जेंटलमैन, जनरली बल होने वाले जेंटल नहीं रहते, वो बहुत रफ बन जाते हैं, लेकिन भगवान की ये विशेषता है बल होते हुए भी वो बहुत सौम्य है या जेंटलमैनली है। तो ये अर्थ है बलभद्र ये शब्द का। तो भगवान देवकी के सातवें गर्भ में प्रकट हुए और फिर उनको स्थानांतरित किया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो दोनों जगह भगवान अवतरित होने के पूर्व बलराम जी गए और इसलिए उनके अलग अलग नाम हुए, अनंत सहस्रवदन बलभद्र बलराम। तो बलराम ये शब्द का सुबह भी रेवती नंदन पो ने अर्थ बताया था, लेकिन और एक अर्थ बताया जाता है कि राम यानी कि जो सभी जीवात्माओं की कृष्ण के प्रति जो रति है वो बढ़ाने वाले वो राम, या अनंत। तो प्रलय में ब्रह्मांड का अंत हो जाता है लेकिन प्रलय काल में भी जिनका अंत नहीं होता ऐसे व्यक्ति यानी कि अनंत, या अशेष, सब कुछ शेष हो जाता है प्रलय काल में लेकिन जो बचते हैं वो है अशेष। और सहस्त्रवदना जिनके हजारों मुख है और ये हजारों मुखों के द्वारा जो कंटिन्यूअस भगवान का गुणगान करते हैं ऐसे ये सहस्त्रवदन। और ये श्लोक में ये भी शब्द आता है कि स्वराट, तो भगवान जैसा ही स्वेन एव राजते इति स्वराट, स्वयं जैसा ही विराजमान या शक्ति प्रदर्शित करने वाले ऐसे ये बलराम। और ये बृहत सहस्त्र नाम स्तोत्र जो बलराम जी के हजार नामों वाला स्तोत्र है, तो उसमें एक शब्द आता है, ये एक नाम आता है, पूर्व भक्ति खेदा चुताग्रज, तो पहले की हुई भक्ति, पूर्व भक्ति खेद, उसके बारे में उनको खेद था, बहुत उनको प्रसन्न नहीं थे। अच्युताग्रज, अच्युत के अग्रज यानी बड़े भाई की, जिनको पहले जन्म में भक्ति करते हुए बहुत ग्लानी हुई, खेद हुआ। तो सुबह के क्लास में इसके बारे में उदाहरण भी अपने देखे कि लक्ष्मण जी कैसे अलग अलग जगहों पर बहुत पीड़ित रहे। तो इसलिए अभी इस अवतार में मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा लेकिन मैं भगवान की ऐसी सेवा करूंगा को ऐसी सेवा करके भगवान का जो दुख है वो एकदम नष्ट ही हो जाए या मिनिमम रहे, तो ऐसे रूप में मैं सेवा करूंगा। तो आगे वर्णन आता है कि बलराम जी प्रकट होते हैं और गर्ग मुनि आ जाते हैं। तो गर्ग मुनि को वसुदेव जी कहते हैं कि आप गोकुल में जाइए और उधर नंद महाराज के पास जो दो बच्चे हैं तो उनका नामकरण विधि जो है वो आप कीजिए। तो गर्ग मुनि जब उधर पहुंचते तभी भी गर्ग मुनि अपना सब हॉरोस्कोप या जो कॉन्स्टिलेशन है नक्षत्र है ये सब स्टडी करते हैं और फिर बोलते हैं, अयम ही रोहिणो रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण ही आख्या सते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुहु यदू नाम पृथक भावाद संकर्षणम उशंति उत। तो तीन नाम वो बताते हैं, अयम ही रोहिणो रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे हैं। तो अपने सुहृदों को अपने भक्तों को गुणों के द्वारा जो बहुत आनंद प्रदान करेंगे, तो ऐसे ये रोहिणी के पुत्र इनका एक नाम होगा राम और बल अधिक होने से उनका नाम होगा बलराम। और दो कुलों को वो इकट्ठा लाने वाले हैं, यदुकुल और वृष्णिकुल, तो इन दोनों को इकट्ठा लाने वाले इसलिए इनका नाम रहेगा संकर्षण। तो भगवान बलराम, कृष्ण और बलराम ये दोनों बड़े हो जाते हैं, उनकी बाल लीला 5 वर्ष तक होती है और उसके बाद वो पौगंड अवस्था में 6 से 10 उम्र जब आती है तो उसको पौगंड अवस्था कहते हैं, तो उसमें पहुंचते हैं। और यही अवस्था में सुबह जो लीला बताइए, बलराम जी ने पहले असुर का वध किया और उसका नाम क्या था, धेनुकासुर, जो कि एक गधे के रूप में था। तो गधा यानी कि जो फॉल्स बर्डन है या ओवर बर्डन, तो हम भी बहुत बार ऐसे सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटी, जो हमारी वास्तविक ड्यूटी नहीं है, ऐसे ड्यूटी के बारे में बहुत मानसिक लोड लेते हैं कि ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। विशेष करके जो भौतिक अधिकारी है, उन्होंने दिए हुए जो काम है वो व्यक्ति करने में बहुत अलर्ट रहता है, ये डेट तक ये प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, ये डेट तक ये काम होना चाहिए। हर दिन शाम को अपना जो अधिकारी है उसको कॉल करके आज ये काम हुआ रिपोर्ट करता है वो। तो जैसे ये भौतिक जगत के जो मास्टर्स है, अधिकारी है, उनको रिपोर्ट करने में या वो ड्यूटी करने में लोग बहुत सतर्क है, लेकिन आध्यात्मिक ड्यूटी पूरी करने के लिए लोग इतने सतर्क नहीं है। तो भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है वो प्रकट करने का हर एक का कर्तव्य है। तो भगवान की कृपा से ही हम जो भी अन्न प्राप्त करते वो भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, और ये अन्न पकाने के बाद पचन भी भगवान ही करते हैं। तो इतनी मदद भगवान हमको कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ये हर एक की ड्यूटी है। लेकिन ये ड्यूटी को वो द्वितीयम मानते हैं, सेकेंडरी मानते हैं, और भौतिक ड्यूटी को बहुत प्राधान्य देते हैं। तो ये धेनुकासुर ये इसका प्रतीक है कि ये अननेसेसरी बर्डन कैरी करता है। तो हमें भी जरा आत्म परीक्षण कर देखना चाहिए कि कौन सी मेरी भौतिक ड्यूटी है, कितना उसको महत्व देना है, और आध्यात्मिक ड्यूटी। तो आगे जाके वर्णन आता है कि भगवान प्रलंबासुर का वध करते हैं। ये प्रलंबासुर गोप रूप में आया था और ये दो टीम बनते, कृष्ण की एक टीम, बलराम जी की एक टीम, और उसमें बलराम जी जीत जाते हैं और ये प्रलंबासुर जो कि कृष्ण के साइड में था, तो ये कृष्ण की टीम हार जाती है। तो कृष्ण भी अपने जो सखा है श्रीदामा, उनका वो कंधे पर बिठाते और वहन करते, और ये प्रलंब जो रहता है वो बलराम जी को, और फिर आगे जाकर बलराम जी भी ये प्रलंबासुर का वध कर देते हैं। तो ये दो उदाहरण, और तीसरा है आगे जाकर बलराम जी द्विविध नाम का एक वानर, ये द्विविध रामायण की टाइम से था, ये लीला चल रही है अभी द्वापर युग के अंत में, लेकिन ये द्विविध था रामायण यानी त्रेता युग की शुरुआत में। तो ये संभव है क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, चतुर्युग, एक चतुर्युग यानी कि ब्रह्मा जी की कुछ मिनट है, हमारे लिए जैसे कुछ मिनटों में हम कई लोगों से मिल लेते हैं या कई सफर कर भी आ जाते हैं, तो वैसे हमारे दृष्टिकोण से लगेगा कि यार ये द्विविध रामायण में था लेकिन वो अभी कृष्ण की लीला में कैसे उपस्थित है। तो ब्रह्मा जी के टाइम स्केल के अनुसार ये कुछ भी नहीं है। तो ये द्विविध, ये इसके तीन विशेषण हैं। तो ये भौमासुर का मित्र था, ये सुग्रीव का मंत्री भी था, और मैंद नामक जो वानर जो भगवान रामचंद्र की बहुत सेवा की उसने, तो ये मैंद का ये भाई था। तो भगवान ने ये भौमासुर का उद्धार कर दिया। तो भौमासुर का उदाहरण है जिसका बल उसके पास था लेकिन वो बल का हमेशा दुरुपयोग करता था। तो भौमासुर को हजार हाथ थे, भौमासुरी बाणासुर, तो भौमासुर ने ये 10,000 राजाओं को बंदी बना के रखा था। तो वो अपने बल का उपयोग किस लिए कर रहा था, दूसरे प्रांत के राजाओं को कैद करके अपने राज्य में लाकर उनको कारागृह में रखा था। तो उधर के प्रांत का या उधर के लोगों का जो शासन है वो राजा करे ऐसा भाव नहीं था, वो मेरे अधीन रहे और मेरे जेल में रहे। तो ऐसे भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। तो इसलिए द्विविध ये बहुत क्रोधित हुआ था कृष्ण और बलराम के प्रति। और साथ साथ ये भी रीजन बताया जाता है कि ये द्विविध जब रामायण में भगवान राम को मदद कर रहे थे तब उनका भगवान राम के प्रति बहुत आदर था, लेकिन लक्ष्मण के प्रति इतना आदर नहीं था। तो ये अपराध के कारण उनका संग ये भौमासुर से हुआ। तो अपराध का रिजल्ट क्या है, हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता और फिर कुसंग है वो अच्छा लगने लगता है, ये भी अपराध का एक इफेक्ट है। तो ये द्विविध को ये भौमासुर असुर का संग अच्छा लगने लगा, और यह भौमासुर का वध होने के बाद कृष्ण और बलराम जो कि सभी जीवात्माओं के सुहृद है, हितैषी है, वेल विशर है, ऐसे व्यक्ति भी शत्रु जैसे प्रतीत होने लगे। और फिर ये द्विविध ये बलराम जी जहां पर लीला कर रहे थे वहां पर जाकर बहुत परेशानी या बहुत ऑब्स्टेकल्स बहुत बाधाएं उत्पन्न करने लगा। तो बलराम जी ने उनको किस प्रकार माला, उन्होंने उनका जो एक मुसल था तो मुसल का प्रहार ये द्विविध के ऊपर कर दिया और उसके द्वारा ये द्विविध के प्राण चले गए। तो आगे जाकर और भी एक लीला आती है कि जिसमें दुर्योधन को जिन्होंने ट्रेनिंग दिया बलराम जी, तो दुर्योधन ही बलराम जी के अगेंस्ट में जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो 8 प्रमुख रानियां थी उसमें से एक रानी का नाम था जाम्बवती, और ये जाम्बवती के पुत्र हुए सांब। तो ये सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, तो इसका जब स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर पूरा नहीं किया, जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं की, लेकिन वो स्वयंवर में से लक्ष्मणा का अपहरण कर वो जा रहा था। तो ये दृश्य देखकर जो कौरव वंश के लोग थे वो बहुत क्रोधित हो गए कि ये सांब ने सही कार्य नहीं किया, उसने हमारी बेटी का अपहरण किया है। तो 6 प्रमुख योद्धाएं ये सांब का पीछा करने लगी, और सांब भी अकेला ये 6 योद्धाओं के साथ कुछ समय तक लड़ता रहा, और बाद में उसने उसके ऊपर ये 6 लोगों ने एक साथ आक्रमण किया। तो इसके कारण सांब बाद में पकड़ा जाता है और उसको अरेस्ट कर ये सभी कौरव उसको हस्तिनापुर लेके जाते हैं। और ये जब खबर जो है द्वारका में पहुंचती है तो द्वारका के जो राजा थे उग्रसेन महाराज, तो वो तुरंत आदेश देते अपने मंत्रियों को कि पूरी सेना की व्यवस्था की जाए और ये सेना को लेकर हम हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण करेंगे और ये कौरवों के विरुद्ध युद्ध कर फिर शाम को मुक्त कर फिर लाएंगे। लेकिन ये जब न्यूज बलराम जी को पता चलती है तो बलराम जी सोचते हैं कि ऐसा युद्ध वगैरह कर बहुत खून खराबा होगा, बहुत लोगों की हत्या होगी और ये दोनों वंशों का जो स्नेहमय वा संबंध है वो टूट जाएगा, तो इसलिए पहले मैं अकेला ही जाता हूँ हस्तिनापुर में, मैं अकेला ही जाता हूँ, कुछ सैनिकों को साथ में लेके जाता हूँ और समझौता कर हो सकता है क्या, ये प्रयास करता हूं। तो बलराम जी द्वारका से निकले और हस्तिनापुर के नजदीक पहुंचे, और उधर पहुंचने के बाद एक उपवन में वो ठहरे जो हस्तिनापुर के नजदीक था, एक छोटा वन, तो उधर वो रुके और उन्होंने अपना एक संदेशवाहक, तो उद्धव को संदेशवाहक बनाकर भेजा कि आप जाइए दुर्योधन या जो कुरु वंश के जो प्रमुख लोग हैं उनके पास जाइए और ये मेरा प्रस्ताव रखिए। तो प्रस्ताव क्या रखा उद्धव जी ने, यद्यूयम् बहवस्त्वेकम् जित्वा धर्मेन धार्मिकम् अबध्नीताथ तन्मृष्ये बंधुनाम ऐक्य काम्यया। तो यद्यूयम् बहवस्त्वेकम्, आप बहुत लोगों ने मिलकर अकेले सांब को जो कि धार्मिक व्यक्ति है लेकिन आपने अधर्मेन जित्वा, उसको अधर्म का सहारा लेकर उसको अरेस्ट किया है, उसको बंदी बना दिया है। तो अबधि ताथ तन मृष्य, तो ये अधार्मिकता का आपका बर्ताव भी हम सहन लेते हैं, लेकिन अभी बंधु नाम ऐक्य काम्यया, तो हम भाई भाई है, तो रिश्तेदार ही है, कजिन्स है, तो ये हमारी एकता बनी रहे, इसलिए जो भी आपने ये अधर्म का सहारा लेते हुए बर्ताव किया वो हम सहन लेते हैं। तो उनके ये वचन वीर शौर्य बलोन्नद्धम आत्मशक्ति समम वचः कुरवो बल देवस्य निशम्योचु प्रकोपिताः। तो ये जो संदेश है उद्धव जी ने कौरों के सामने रखा, और ये शब्द कैसे थे, वीर शौर्य बलोन्नद्ध आत्मशक्तिम समम, तो स्वयं की शक्ति के एकदम अनुकूल ऐसे वीरता के, शूरता के और बलवद उन्नधम वचह, ये सुनने के बाद कुरुओं ने क्या किया, इनको सुनकर, ये वचन को सुनकर वो भी बहुत क्रोधित हो गए। तो उन्होंने, कौरवों ने क्या कहा, अहो महचित्रमिदम कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षत्य उपानद उपानद्वय शीरो मुकुट सेवितम। तो अहो महचित्रमिदम, अरे ये विचित्र व्यवहार देखिए, ये काल की इतनी महिमा है कि काल गत्या दुरत्यया, कि जो शूज को, जो चप्पल को, जो जूते को पैर में रखना चाहिए वो जूता भी सर के ऊपर, इस सर के ऊपर जो मुकुट रहता है वो स्थान प्राप्त करना चाहता है। ये ते यानैव संबंधा सह शय्यासनाशनः वृष्णयस्तुल्यताम नीता अस्मदत्तनुपासनाः। तो ये जो यदु है ये हमारे संबंधी है, ये रिश्तेदार है, और हमने ही अस्मदत्तनुपासनाः, हमने ही इनको ये नृप का आसन, ये राजगद्दी, ये सिंहासन हमने ही प्रदान किया है, और अभी वो हमारे एकदम इक्वल बन गए हैं। वृष्णयस्तुल्यताम नीता, हमने ही उनको ये इक्वल स्टेटस लाने का कार्य हमने ही किया है, और इसके द्वारा सह शय्या आसन अशनहा, और इसी के द्वारा भी वो सेम बेड पर, हम जो बेड पर सोते उसी बेड पर सोते हैं, जो सीट पर हम बैठते उसी सीट पर वो इक्वल आसन लेवल पर जो है वो बैठते हैं, और हमारे साथ अशनहा भोजन भी करते हैं, और साथ साथ उनको जो चामर शंख या छत्री जो भी उनको सुविधा या समृद्धि मिली है ये एक्चुअली हमारे द्वारा ही दी हुई है, क्योंकि ये कुरु सोच रहे थे, कुरु को एक्चुअली उनकी पूर्वज जो पुरु है उनके आशीर्वाद से ऐसा एक सुविधा प्राप्त थी कि पुरु वंश में आने वाला व्यक्ति ही पूरे पृथ्वी का सम्राट बनेगा, क्योंकि ययाति महाराज के जो पांच पुत्र हुए उसमें से पुरु ने ययाति महाराज को प्रसन्न किया, इसलिए पुरु को तुम आगे जाके या तुम्हारे वंश का व्यक्ति ही पृथ्वी का सम्राट बनेगा, लेकिन यदु जिन्होंने ययाति महाराज को प्रसन्न नहीं किया तो उनको मिला शाप, मिला एक तरीके से कि तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति सम्राट नहीं बनेगा, इसलिए ये कुरु जो कि पुरु वंश में आए थे तो उनको अभिमान था कि हमारे ही वंश का व्यक्ति सम्राट बनेगा, और ये यदुओं को हमने ही राज्य दिया है, हमने ही उनको द्वारका या जिस भी क्षेत्र में वो राज्य कर रहे हैं वो हमारे द्वारा ही प्रदत्त है, उन्होंने खुद का उसमें कोई क्षमता नहीं है। तो और भी आगे कहते हैं, कथम इंद्रोपि कुरु भी भीष्म द्रोणार्जुनादि भी अदत्तम अवरुंधीत सिंहग्रस्तम इवोरणः। तो कहां पर ये जो इंद्र भी एक्चुअली भीष्म द्रोण अर्जुन इत्यादि द्वारा जो कुरु है उनके द्वारा जो सुरक्षित राज्य है इंद्र भी छीनकर नहीं ले सकता, लेकिन अभी जो सिंह खाने वाला है वो चीज कोई भेड़िया प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, कोई बकरी उसी कुछ वेजिटेरियन फूड होगा वो सिंह खाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी बकरी भी उसको खाने का प्रयास कर रही है, यानी कि खुद की तुलना सिंह से कर रहे हैं और यदुओं को एकदम निम्न एकदम निकृष्ट स्तर पर देख रहे हैं। तो ये सुनकर बलराम जी कुछ नहीं बोले, बलराम जी शांत रहे, उनका क्रोध उन्होंने प्रकट नहीं किया। तो इतने वचन कहकर ये सब उपवन में संवाद हो रहा था, हस्तिनापुर के महल में नहीं हो रहा था। तो ये सब सुनकर कौरव है वो चले गए और फिर बलराम जी वो उन्होंने ये सब सहन किया। तो ये सहन करने के बाद उन्होंने क्या किया उसके थोड़ा सा वर्णन आता है। दृष्ट्वा कुरुणाम दौशील्य श्रुत्वा वाचा निचाच्युतः अवोचत कोप संरब्धो दुष्प्रेक्ष प्रहसन मुहुः। तो उन्होंने दृष्ट्वा कुरुणाम दौशील्य, तो उनका शील या बर्ताव या कैरेक्टर कैसा, ये एकदम गलत है दुर्व्यवहार को देखकर, और साथ साथ श्रुत्वा वाचानी और इनके अपशब्द सुनकर भी वो चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अवोचत कोप समृद्ध हो, और फिर अभी अकेले में ही उनका प्रो जो कोप है जो गुस्सा है जो कि दुष्प्रेक्ष उनके चेहरे के प्रति देखना भी बहुत कठिन था, उनकी आंखें और पूरा चेहरा इतना लाल हो गया था गुस्से से। तो इतने क्रोधित होते हुए भी प्रहसन मुहु बार बार वो हंसने लगे और फिर बोलने लगे, नूनम नाना मदो नद्धः शांतिम नेच्छन्त्य साधवः तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा। तो नूनम नाना मदो नद्धः, तो अलग अलग प्रकार की समृद्धियों के कारण सचमुच ये जो कौरव है ये अभी उन्मत्त हो गए, बहुत उद्दंड हो गए, और ऐसी उद्दंडता में न इच्छति शांतिम असाधवः, उनको शांति की इच्छा भी नहीं रहे। तो ऐसे कौरवों को तेषां ही प्रशमो दंडः, तो प्रशमः यानी कि उनको प्रकृष्ट रूपेण शांत करने के लिए, पूरी तरह से शांत करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, पशु नाम लगुड़ो यथा, जैसे पशु को हाथ में डंडा लेकर पीटना पड़ता है तब वो शांत हो जाते हैं, वैसे ही ये कौरव जो है इनको बहुत घमंड है, अपने पास जो भी धन है या जो भी राज्य है उसका। तो ये जो संदेश है या ये जो विचार है बलराम जी के मन पर चल रहे थे, और फिर उधर उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि अभी मैं मेरे हल से ये पूरे हस्तिनापुर का जो एरिया है उसको पृथ्वी से अलग कर दूंगा, और ये अलग किया हुआ जो हिस्सा है एक आइलैंड की तरह गंगा के पानी में तैरेगा। तब ये कुरुओं का क्या हाल होता है तब देखते हैं। तो उन्होंने वो गुस्से में आकर अपने हल से जमीन में जोर से मारा हस्तिनापुर के प्रांत में और उसको सचमुच में पृथ्वी से अलग कर दिया। तो ये उनके आप विशेष बल है, उन्होंने पूरा ये नीति के जो चार स्तर है वो अपनाए, पहले साम दाम भेद और बाद में दंड अपनाया। लेकिन आजकल के जो जरा थोड़ा बहुत बल होने वाले व्यक्ति है वो साम दाम अपनाते नहीं, डायरेक्टली भेद या डायरेक्टली दंड देने के मूड में ही आ जाते हैं। तो जो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता, तो बलराम जी का ये यहां पर विशेष गुण है कि उनका बल उन्होंने तुरंत प्रकट नहीं किया, लेकिन सब बाकी तीन मेथड्स फेल होने के बाद में ये चौथा जो दंड का है वो रास्ता अपनाया। तो जब ये हस्तिनापुर अलग हो गया पृथ्वी से, पानी में आ गया और अभी धीरे धीरे नीचे जा रहा था, डूब रहा था वो, तब ये कौरवों को जरा एहसास हुआ कि हमने ये बलराम जी के प्रति दुर्व्यवहार किया है। तो एक्चुअली ये कौरवों का जो ऐसा घमंडपूर्ण व्यवहार था वो करने के पहले बलराम जी ने बहुत सारे बाकी भी कार्य किए थे और ये सब कार्य कौरवों को पता थे। तो ये द्विविध को मारना या जब भगवान कृष्ण और बलराम ये वृंदावन से मथुरा गए तो उधर पहुंचने के बाद उधर के जो शक्तिशाली दो मल्ल थे तो बलराम जी ने कौन से मल्ल के साथ कुश्ती की? मुष्टिक। कृष्ण ने चानोर के साथ की और बलराम जी ने मुष्टिक के साथ। तो बलराम जी तो 11-12 साल के थे यार, लेकिन ये मुष्टिक जो था एकदम बलशाली था, एकदम ऊंचा था, वेट तो दोनों का मैच ही नहीं हो रहा था। आजकल के जो कुश्ती आने थे तो वेट मैचिंग होने के बाद होता है, लेकिन ये सब रूल्स तोड़कर वो मुष्टि युद्ध हुआ, कुश्ती हुई वो। तो उसमें भी बलराम जी ने ये मुष्टिक को मार दिया। और एक दूसरे प्रसंग में जब ये कंस का वध हो जाता है तो कंस के ससुर देखते कि मेरी बेटियां अस्थि और प्राप्ति जो कि कंस की पत्नियां थी वो अभी विधवा बन गई है। तो अभी ये यदु विशेष करके कृष्ण ने मेरे दामाद को मारा है, तो अभी ये मथुरा के ऊपर मैं आक्रमण करूंगा और ये पूरे यदु वंश को ही पृथ्वी से नष्ट करूंगा। तो ऐसा इरादा करके जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है 23 अक्षयोनी सेना लेकर वो आता है। महाभारत में कितनी अक्षयोनी सेना थी? 18 अक्षयोनी सेना थी, लेकिन ये जरासंध अकेला 23 अक्षयोनी सेना लेकर आ गया मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि ये इतनी भारी सेना भी आई है मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो उसका प्रतिकार करने के लिए ऐसे दिव्य दो रथ प्रकट हो गए, उसमें अस्त्र शस्त्र थे और धनुष बाण वगैरह थे। तो ये दोनों रथ के ऊपर बैठ गए और एक छोटी सेना लेकर वो मथुरा के बाहर गए। तो शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जरासंध की इतनी बड़ी सेना ने पूरे ये कृष्ण और बलराम की छोटी सी सेना को पूरा आच्छादित कर दिया है। वो कृष्ण और बलराम के रथ का झंडा भी नहीं दिख रहा था। और ये सब दृश्य मथुरा में रहने वाले जो निवासी है वो अपने घर के छतों के ऊपर से या जो भी बालकनी है वहां से ये सब दृश्य देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में ये दोनों ने, कृष्ण बलराम ने, ये 23 अक्षयोनी सेना को एकदम नष्ट कर दिया। अपनी खुद की सेना को कुछ हानि नहीं होने दिया, लेकिन ये 23 अक्षयोनी सेना पूरी नष्ट कर दी। और वो नष्ट करने के बाद मानो वो खून की एक नदी बह रही थी और नदी में जो सैनिक थे, योद्धाएं थे, उनके हाथ पैर या जो हाथी मारे गए वो भी वो खून में बह रहे थे। तो ये सब एक बार नहीं किया भगवान ने, लेकिन 17 बार किया। और ये सब दुर्योधन को, कौरवों को पता था। लेकिन जब व्यक्ति प्राइड में आ जाता है, संपत्ति का अभिमान हो जाता है, तो आगे वाले व्यक्ति की क्या औकात है, क्या शक्ति है, वो सब भूल जाता है। तो बलराम जी ने ये हस्तिनापुर को पृथ्वी से अलग कर दिया और ये डूबने लगी गंगा में। तब ये कौरव जरा होश में आए और फिर होश में आने के बाद वो बोलते हैं, राम रामा खिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम क्षंतुम अर्हस्य विक्रमम। तो राम राम अखिल आधार, हे बलराम आप पूरे पृथ्वी के या सृष्टि के आधार है, त्वम प्रभावम न विदामते, आपका जो प्रभाव है, जो पावर है वो हमने नहीं जानी। तो हमको जो कि मूढ़ा नाम कुबुद्धि नाम च, जो हम मूढ़ है, कुबुद्धि है, ऐसे हमको आप क्षमा कर दीजिए। तो फिर बलराम जी शांत हो गए और ये कौरवों ने सांब और लक्ष्मणा को आगे किया और फिर बलराम जी का क्रोध जो है वो शांत हो गया। और एक प्रसंग आता है कि जब रुक्मिणी का विवाह हुआ, रुक्मिणी का अपहरण किया कृष्ण ने द्वारका से, वो कौंडिन्यपुर आए और वहां से रुक्मिणी को लेकर द्वारका जा रहे थे। तो उस टाइम रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, तो उस टाइम बलराम जी भी मदद करने के लिए आ गए और फिर ये रुक्मी को पूरी तरह से परास्त करकर उसको बंदी बनाया और उसको बहुत अपमानित करकर छोड़ दिया। मार भी सकते थे लेकिन आखिरी में ये मेरे पत्नी का भाई है। और बलराम जी ने भी उपदेश दिया कृष्ण को कि इसका वध मत कीजिए, सो अपमानित करकर उसको छोड़ देते, जैसे एक शिकारी बहुत निग्लेक्टफुली किसी बंदर को या किसी अन्य पशु को छोड़ देता है। तो आगे जाकर ये रुक्मी का पुत्र और उसके पुत्र का एक बेटी थी रोचना, और इधर कृष्ण और रुक्मिणी इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। तो केवल अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए, हालांकि कृष्ण और बलराम के साथ उनका अच्छा व्यवहार या अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन अभी बहन को प्रसन्न करने के लिए ये रुक्मी ने निर्णय लिया कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है प्रपुत्री रोचना, इसका विवाह मैं रुक्मी के प्रपोत्र अनिरुद्ध है इनके साथ मैं करना चाहता हूं। तो ये दोनों का विवाह जिस दिन हो रहा था उस दिन ये रुक्मी के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि आप बलराम जी को ये जो द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए आप उसको इनविटेशन दीजिए। उनको आता नहीं है खेलना लेकिन बहुत उत्साह है खेलने का, तो ये जरूर हार जाएंगे और फिर आपका जो प्रतिशोध लेने का जो इच्छा है तो ये पूरा हो जाएगा। असेंबली में सबके सामने जब हार जाएंगे बलराम जी तब फिर आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इस प्रसंग में आगे आता है वर्णन कि शुरुआत में 3 बार ऐसा हो जाता है कि बलराम जी हार जाते हैं। पहले 100 सुवर्ण मुद्राएं दांव पर लगाते हैं, वो रुक्मिणी जीत लेता है, फिर 1000 मुद्रा, फिर 10000 मुद्रा। तो ऐसे ये सुवर्ण मुद्राएं दांव पर लगाते हैं और फिर चौथे अटेम्प्ट में बलराम जी बहुत बड़ा सुवर्ण मुद्राओं दांव पर लगाते हैं और उसमें वो जीत जाते हैं। और ये जीतने का घोषणा भी हो जाता है, आकाशवाणी भी हो जाती है कि अभी बलराम जी जीते हैं, लेकिन ये रुक्मी मानता नहीं है, मैं ही जीता हूं। तो ऐसा व्यवहार देखकर अंदर ही अंदर बलराम जी इतना क्रोधित हो रहे थे, तो उन्होंने ये रुक्मी को अपने ग्रैंड डॉटर के मैरिज के अवसर पर ही एक मुसल जिसमें बहुत ऐसे स्पाइक्स थे, कांटे मोटे मोटे थे, वो लिया और वो रुक्मी के ऊपर प्रहार कर दिया और विवाह के दिन ही ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। श्री बलराम जी की। तो इधर ही रुकते हैं हम, अभी आरती होगी। तो सब लोग प्रार्थना कीजिए कि बलराम जी जैसा सेवा भाव और भगवान को अवतरित होने की पूर्व जो अनुकूल भाव है वो हमारे हृदय में प्रकट हो। हरे कृष्णा।